Thank you, Tabernacle Choir.
धन्यवाद देते हैं गायक मंडली को. कितना अच्छा गायक मंडली है. मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कुछ समय पहले मुझे एक चिंतित माँ ने एक पत्र लिखा जिसमें याचना की गई थी कि जनरल कॉन्फ्रेंस सम्मेलन के एक विशेष विषय पर बोलूं जिसे विशेषकर दो बच्चों को फायदा मिले. उनके बीच मन मिटाव हो गया था और उन्होंने बातचीत करनी बंद की थी. माँ का दिल टूट चुका था. उस पत्र में माँ ने लिखा था कि इस विषय पर जनरल कॉन्फ्रेंस के संदेश दें जिससे उसके बच्चों के बीच सब ठीक हो जाए. इस भली बहन की सच्ची और दिल की याचना उन कई प्रेरणाओं में से एक है जिन मैं पहले ही प्राप्त कर चुका हूँ इस विषय पर कि मुझे कुछ शब्द कहने चाहिए इस विषय पर. न केवल चिंतित माँ के लिए लेकिन कई गिरजा के सदस्यों में और विश्व में भी एक चिंता का विषय है. मैं इस माँ के विश्वास से प्रभावित हूँ कि जनरल कॉन्फ्रेंस के संदेश से उसके बच्चों के बीच संबंध सुधर जाएंगे. मुझे पता है कि उसका विश्वास बोलने वाले की योग्यता में इतना नहीं जितना परमेश्वर के वचन के प्रभाव में है जिसका प्रभाव लोगों के मनों में अन्य किसी भी बात से अधिक होता है. प्रिय बहन, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आत्मा आपके बच्चों के दिलों को छुए. तनावपूर्ण और टूटे हुए संबंध उतने ही पुराने हैं जितने की मनुष्य जाति स्वयं है. अतीत का केन सबसे पहले व्यक्ति था जिसने कड़वाहट और कपट के कैंसर को अपने दिल में जगह दी थी. उसने अपनी आत्मा की भूमि पर बैर और द्वेष के बोए को बोया था और उन भावनाओं को बढ़ने इतना दिया था मौका दिया था कि उसने अपने भाई की हत्या कर दी थी. उसने झूठ के शैतान के पैदा किया था. उन दिनों से आरंभ होकर दुर्भावना और नफरत की आत्मा ने इतिहास में कई दर्दनाक कहानियों को जन्म दिया है. इसने शाउल को दाऊद के विरुद्ध, याकूब के बेटों को यूसुफ के विरुद्ध किया, लमन और लेम्यूल को नफी के विरुद्ध किया और एमलेकाया को मरोनी के विरुद्ध किया. मैं अनुमान लगाता हूँ कि इस पृथ्वी पर प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में द्वेष, नाराजगी और बदले की विनाशकारी आत्मा से पीड़ित हुआ है. शायद कई बार हम अपने भीतर भी इस आत्मा को पाते हैं. जब हमें ठेस लगती है, गुस्सा आता है या ईर्ष्या महसूस करते हैं, तब हमारे लिए दूसरों पर दोष लगाना आसान होता है. अपनी नफरत की भावनाओं को उचित ठहराने के लिए हम अक्सर उनके कामों को दुर्भावना से भरा कहते हैं. अवश्य ही हम जानते हैं कि यह गलत है. सिद्धांत बिल्कुल स्पष्ट है. हम सभी उद्धारकर्ता पर निर्भर हैं. हम में से कोई भी उनके बिना नहीं बचाया जा सकता. मसीह का बलिदान असीमित और अनंत है. हमारे पापों की क्षमता शर्तों के साथ मिलती है. हमें पश्चाताप करना चाहिए और हमें दूसरों को क्षमा करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए. यीशु ने सिखाया था, एक दूसरे को क्षमा करो, क्योंकि वह जो क्षमा नहीं करता प्रभु से के सम्मुख दंडित किया जाएगा, क्योंकि वह सबसे बड़ा पापी है. और धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी. अवश्य है ये शब्द बिल्कुल उचित लगते हैं जब किसी अन्य पर लागू किए जाते हैं. हम बिल्कुल स्पष्ट रूप से और आसानी से उन बुरे परिणामों को देख सकते हैं जो दूसरों के बारे में दोष लगाने और नफरत करने से आते हैं. और हम ऐसा अपने लिए बिल्कुल नहीं चाहेंगे जब दूसरों हम पर दोष लगाते हैं. लेकिन जब हमारे स्वयं पर नफरत और दुखों की बात आती है, हम बहुत बार अपने गुस्से को सही बताते हैं, क्योंकि और इस किसी पर दोष लगाने को ठीक और उचित ठहराते हैं। यद्यपि हम दूसरे लोगों के दिलों में झांक नहीं सकते, फिर भी हम मानते हैं कि जब हम किसी को देखते हैं, हम उसकी बुरी भावना या यहां तक कि उसके बुरे व्यक्ति को पहचान सकते हैं। जब हमारी स्वयं की कड़वाहट की बात आती है तो हम इसे अपवाद मानते हैं, क्योंकि हम महसूस करते हैं कि किसी अन्य पर दोष लगाने के लिए हमारे पास पर्याप्त सबूत है। प्रेरित पौलुस ने रोमियो को अपने पत्र में कहा था कि जो दूसरों पर दोष लगाते हैं दोषी हैं। जिस क्षण हम दूसरों पर दोष लगाते हैं, वह समझता है हम स्वयं पर दोष लगाते हैं, क्योंकि कोई भी बिना पाप के नहीं है। क्षमा न करना बहुत गंभीर पाप है, जिसके विषय में उद्धारकर्ता ने चेतावनी दी थी। स्वयं यीशु के विषय शिष्य एक दूसरे के विरुद्ध ऐसे मौके का खोज करते थे और अपने दिलों में एक दूसरे को क्षमा नहीं करते थे, और इस बुराई के कारण उन्होंने बहुत कष्ट सहा और उन्हें बहुत दंडित भी किया गया। हमारे उद्धारकर्ता ने इस विषय में इतनी स्पष्टता से बोला है कि इसकी लिए किसी सफाई की जरूरत नहीं है। मैं प्रभु जिसे चाहूं उसे क्षमा करूंगा, वह कहते हैं, लेकिन यह तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम सभी को क्षमा करो। मैं इसमें कुछ जोड़ना चाहता हूं। जब प्रभु चाहते हैं कि हम सभी व्यक्तियों को क्षमा करें, इनमें अपने आप को क्षमा करना भी शामिल है। कभी कभी संसार के सभी लोगों में से वह व्यक्ति जिसे क्षमा करना बहुत कठिन होता है, हम स्वयं होते हैं। दूसरों पर दोष लगाने के इस विषय को वास्तव में दो शब्द की सलाह से सिखाया जा सकता है। जब नफरत करने, बुराई करने, अनदेखी करने, मजाक उड़ाने, ईर्ष्या रखने या नुकसान पहुंचाने की बात आती है, कृपया ऐसा करें, इसे रोकें। यह इतना आसान है। हमें केवल दूसरों पर दोष लगाना रोकना है और दोष लगाने के विचार को और अनुभूतियों को परमेश्वर के उनके बच्चों से प्रेम करने में बदलना है। परमेश्वर हमारे पिता हैं, हम उनके बच्चे हैं, हम सभी भाई बहन हैं। मुझे ठीक से पता नहीं कि दूसरों पर दोष न लगाने की बात को जोरदार तरीके से जुनून और दृढ़ता से कैसे कहूं कि यह आपको हमेशा याद रहे। मैं धर्मशास्त्र का उदाहरण दे सकता हूं, मैं सिद्धांत को समझा सकता हूं, मैं गाड़ी के पीछे लगे स्टिकर का उदाहरण भी दे सकता हूं, जिसे मैंने हाल में ही देखा था। यह एक कार के पीछे लगा हुआ था जिसके ड्राइवर दिखने में सभ्य नहीं था, लेकिन दो शब्द स्टिकर में लिखे हुए एक महत्वपूर्ण बात सिखाते थे। इसमें लिखा था, मुझ पर दोष मत लगाओ क्योंकि मैं तुमसे अलग प्रकार के पाप करता हूँ। हमें पहचानना चाहिए कि हम सभी में दोष है, कि परमेश्वर के सामने हम सभी भिखारी हैं। क्या हम सभी कभी न कभी विनम्रता से दया की सिंहासन के पास नहीं जाते और ईश्वर से दया की याचना नहीं करते? क्या हमने अपनी आत्मा की संपूर्ण शक्ति से दया की चाहत नहीं की है कि हम उन गलतियों और पापों के लिए क्षमा किए जाएं जो हमने किए हैं? क्योंकि हम सभी परमेश्वर की दया पर निर्भर हैं। हम कैसे दूसरों उस दया को देने से इनकार कर सकते हैं जिसे हम अपने लिए पाने की इतनी प्रबल इच्छा करते हैं? भाइयों और बहनों, क्या हमें उसी प्रकार दूसरों को क्षमा नहीं करना चाहिए जिस प्रकार हम अपने आप को क्षमा के लिए इच्छा चाहते हैं? क्या ये ऐसा करना मुश्किल है? हाँ बिल्कुल है। अपने आप को और दूसरों को क्षमा करना आसान नहीं। असल में हमें से बहुतों के लिए अपने व्यवहार और सोचने के तरीके में बदलाव करने की जरूरत होती है। हृदय परिवर्तन की भी जरूरत होती है, लेकिन खुशी की बात है, हृदय का यह बड़ा परिवर्तन ठीक वही है जो यीशु मसीह का सुसमाचार लाने के लिए रचा गया है। यह कैसे किया जाता है? परमेश्वर के प्रेम के द्वारा। जब हमारे हृदय परमेश्वर के प्रेम से भरे रहते हैं, हमारे साथ कुछ अच्छा और पवित्र होता है। हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं और उनकी आज्ञाएं कठिन नहीं हैं, क्योंकि जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर विजय प्राप्त करता है। जितना अधिक हम परमेश्वर के प्रेम को हमारे मनों और भावनाओं को नियंत्रण करने देते हैं, जितना अधिक हम स्वर्गीय पिता के प्रति अपने प्रेम को अपने हृदयों के भीतर विकसित होने देते हैं, उतना ही अधिक दूसरों को मसीह के पवित्र प्रेम के साथ प्रेम करना आसान होता है। जब हम अपने हृदयों में परमेश्वर के प्रेम की उज्जवल उशाल का को आने देते हैं, नफरत और शत्रुता का अंधकार और ठंडापन दूर हो जाता है। हमेशा की तरह मसीह हमारे लिए उदाहरण हैं। अपने जीवन में, अपनी शिक्षाओं में उन्होंने हमें मार्ग दिखाया। उन्होंने दुष्टों और मजाक उड़ाने वालों को जो उन्हें मारना और नुकसान पहुंचाना चाहते थे, उनको क्षमा किया। यीशु ने कहा कि जो हमें प्यार करते हैं उन्हें प्यार करना आसान है। ये तो दुष्ट भी कर सकता है, लेकिन यीशु मसीह ने उच्च नियम सिखाया। उन्होंने उनके शब्द सदियों के से गूंज रहे हैं और आज भी हमारे लिए मान्य रखते हैं। यह उन सभी के लिए है जो उनके शिष्य बनने की चाहत रखते हैं। ये आपके और मेरे लिए है। अपने बुराइयों से प्रेम रखो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। जब हमारे हृदय परमेश्वर के प्रेम से भर जाते हैं, हम एक दूसरे के प्रति दयालु, नर्म दिल, क्षमा करने वाले बन जाते हैं, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में हमारी गलतियों को क्षमा किया है, वैसे ही हम भी एक दूसरे की गलतियों को क्षमा करते हैं। मसीह का पवित्र प्रेम हमारी आंखों से नाराजगी और गुस्से पर पर्दे को हटाता है, जिससे हम अन्य लोगों को उसी प्रकार देखते हैं जैसे हमारे स्वर्गीय पिता हमें देखते हैं, कि हम सभी दोषी और अपूर्ण लोग हैं, लेकिन हमारे भीतर इतनी क्षमता और योग्यता है जो कि हमारी कल्पना से परे है, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम बहुत अधिक करते हैं, इसलिए हम भी एक दूसरे को प्रेम और क्षमा करना चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, निम्न प्रश्नों द्वारा स्वयं की जांच करें। क्या आपके मन में किसी के प्रति नफरत है? क्या आप किसी के बुराई करते हैं? बेशक जो आप कहते हैं वो सच है। क्या आप किसी को अपने साथ शामिल नहीं करते, दूसरों से दूर रखते हैं या दंड देते हैं क्योंकि उन्होंने कुछ किया है? क्या आप अपने मन में किसी की प्रति बैर रखते हैं? क्या आप किसी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? यदि आप इन प्रश्नों में से किसी के लिए भी हाँ उत्तर दिया है, तो आप पर वही दो शब्द की सलाह लागू होती है जो पहले बताई थी, इसे रोकें। दो लगाने और शत्रुता के संसार में पत्थर एकत्रित करना और लगाना आसान है, लेकिन ऐसा करने से पहले उनके वचनों को याद रखें जो हमारे स्वामी और आदर्श हैं। तुम में से जो निष्पाप है वह पहले पत्थर लगाए। भाइयों और बहनों, आओ हम अपने पत्थरों को नीचे रख दें। आओ हम दयालु बने। आओ हम क्षमा करें। आओ हम शांति से एक दूसरे से बातें करें। परमेश्वर के प्रति के प्रेम को हमारे हृदयों को भरने दें और सभी के साथ भलाई करें। उधारकर्ता ने वादा किया है, यदि दया करो तो तुम्हें भी दया दिया जाएगा। लागू लोग पूरे नाप दबाकर और हिल हिलाकर, क्योंकि जिसे नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हें भी नापा जाएगा। क्या यह वादा नकारात्मक व्यवहार करने के स्थान पर दया, क्षमा और भलाई करने के हमारे प्रयासों को केंद्रित करने के लिए काफी है। आओ हम यीशु मसीह के शिष्य के रूप में बुराई के बदले भलाई करें। आओ हम बदले की भावना या नफरत को अपने ऊपर विजय न पाने दें, क्योंकि लिखा है, पलटा लेने मेरे काम है, प्रभु कहते हैं, परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला। बुराई से न रहो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। द चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ लैटरडे सेंट्स के सदस्यों के रूप में हम जहां भी कहीं हो, आओ हम ऐसे लोगों के रूप में पहचाने जाएं जो एक दूसरे से प्रेम करते हैं। भाइयों और बहनों, इस विश्व में पहले ही काफी दुख और दर्द है। इसमें अपनी अड़ियलपन, कड़वाहट और नफरत को इसमें शामिल न करें। हम निपुण नहीं हैं, हमारे आसपास के लोग परिपूर्ण नहीं हैं। लोग ऐसे काम करते हैं जिनसे परेशानी होती है, निराशा होती है और गुस्सा आता है। इस नश्वर जीवन में ऐसा हमेशा होता रहा है, फिर भी हमें अपनी शिकायतों को छोड़ देना चाहिए। नश्वरता के उद्देश्य में भी सिखाना है हिस्सा है कि कैसे इन बातों को छोड़ें। यह प्रभु का मार्ग है। अपने बोझ को उद्धारकर्ता के चरणों में डाल दो, दोष लगाना छोड़ दो, मसीह के प्रायश्चित को अपने हृदय को बदलने और चंगा करने दें। एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे को क्षमा करें। इसके बारे में मैं गवाही देता हूँ उनके नाम में जो पूरी तरह से प्यार करते हैं, जिन्होंने अपनी जान दी थी हमारे लिए, उनके पवित्र नाम में। आमीन।